तो अगला टॉपिक है मस्जिद के मसाइल और फजाइल। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कल्चर में आज मस्जिद की वो हैसियत नहीं रही जो कि होनी चाहिए। आप कहेंगे तो मर्दों के इश्यूज हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि मर्दों को भेजने वाली खवातीन ही होती हैं। तो आइए इस मौजू को इस सोच के साथ सुनते हैं और पढ़ते हैं कि हमने अपने बेटों को, वो भी तो मर्द ही बनेंगे ना कल, और ऑफ कोर्स अपने भाइयों को और अपने शौहरों और दूसरों को मस्जिदों की रग़बत दिलानी है। और ख़ास तौर पे फिर इसी मैन पे टॉपिक आएगा कि ख़वातीन मस्जिद के साथ क्या ताल्लुक़ रखे। चलिए पेज 97, मसाजिद के मसाइल और फजाइल। मसाइल कहते हैं मसले, हुक्म, क्या जायज़ है क्या नहीं, और फजाइल मीन उसके बेनिफिट्स। मस्जिद की फजीलत हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दोहरा लीजिए अगर चाहें तो, हदीस पढ़ने से बंदा खूबसूरत होता है। अल्लाह के नबी की दुआ है हदीस पढ़ने वाले के लिए, मम बना मस्जिदन यब तगी बिही वजहल्लाही बनल्लाहु लहू मिसलहू फिल जन्ना। जो शख्स मस्जिद बनाए और इसके जरिए से अल्लाह ताला की रजा चाहता हो तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में इस मस्जिद जैसा घर बनाता है। दुनिया में अपना घर बनाना कितना बड़ा ख्वाब है, मेरा घर मेरी जन्नत, और आपके ख्वाबों की तबीर नहीं पूरी हुई। कोई बात नहीं, रोड पे तो नहीं सो रहे, किराए पे रह लें, अल्लाह के घरों की फिक्रें कर लें, अल्लाह आपके भी घर बना देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को मस्जिदें बहुत ज़्यादा महबूब हैं और बाजार इंतहाई नापसंदीदा। माजरत के साथ मॉल को भी बाजार ही कहते हैं, शॉपिंग प्लेसेस भी बाजार ही हैं। कहाँ किसका दिल लगता है ये हर एक खुद से पूछ सकता है। मतलब यह कि अल्लाह ताला को मस्जिदें दुनिया की तमाम जगहों से बढ़कर महबूब और प्यारी हैं, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला की इबादत होती है, और बाजार अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा हैं क्योंकि वहाँ हर्स, तमा, झूठ, मकर और लेन देन में फ्रेब और धोखे का दौरा होता है। याद रहे कि किसी दीनी या दुनियावी जरूरत के बगैर बाजार हरगिज नहीं जाना चाहिए और मस्जिदों को बेहद महबूब रखना चाहिए। और नोट करें कि औरतें नहीं, मर्दों के लिए भी बाजार नापसंदीदा जगह है, इल्ला ये कि वहां वो रिस्के हलाल और वो तरीका इख्तियार करें कि जिसमें फिर कम अज कम औरतों से इंट्रैक्शन ना हो। ये तो एक बड़ा दुखी टॉपिक है, लेकिन बहरहाल हुक्म यही है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दिन के अव्वल हिस्से में या दिन के आखिरी हिस्से में मस्जिद की तरफ जाए, अल्लाह ताला इसके लिए बहिश्त में मेहमानी तैयार करता है। अव्वल हिस्से में कोई क्यों जाएगा भला, फजर के लिए, और आखिरी हिस्से में मगरिब, ईशा, और इल्म लेने के लिए भी जा सकते हैं, दिन के दो वक्तों में औरत भी जा सकती है। तो बहिश्त में अल्लाह तैयार करते हैं, हमारे पास भी कोई आए तो हम भी उसके लिए खाने वगैरह चाय पानी तैयार करते हैं ना, तो अल्लाह भी फिर मस्जिदों में जाने वालों के लिए तैयार करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स वुजू करे और बहुत अच्छे तरीके से वुजू करे और फिर मस्जिद का कसद करे, तो एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में ना डाले, क्योंकि बेशक वो इस वक्त नमाज में ही होता है। ये भी अहम चीज़ है, नीयत के साथ ही आपकी नमाज शुरू हो जाती है। तो लेयर एटीट्यूड, उंगलियां डालना, जैसे कुछ लोग यूं करते हैं उंगलियां फोड़ना, ये नहीं करना चाहिए वुजू करने के बाद। यानी तुम्हें बराबर नमाज का सवाब मिल रहा होता है, वल्लाहु आलम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में ना डालो। बाज़ मसाजिद में नमाजों का सवाब, मसलन मस्जिद अक्सा में एक नमाज 250 नमाजों के बराबर है, मस्जिद हराम में एक नमाज दूसरी मसाजिद की 1,00,000 नमाजों के बराबर है या उससे अफजल है, मस्जिद नबवी में एक नमाज दीगर मसाजिद की 1,000 नमाजों से बेहतर है सिवाय मस्जिद हराम के। अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, यानी क्वेश्चन किया, नफिल नमाज घर में पढ़ना अफजल है या मस्जिद में? आपने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि मेरा घर मस्जिद के किस कदर करीब है? इसके बावजूद फर्ज नमाज के अलावा मुझे घर में नमाज पढ़ना ज्यादा पसंद है। यानी मर्द भी घर में नमाज पढ़ेंगे, कौन सी? सुन्नत और नवाफिल। आपने फरमाया, जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो तो नमाज का कुछ हिस्सा यानी नवाफिल और सुन्नतें अपने घरों में पढ़ो, अल्लाह ताला इस नमाज के सबब घर में भलाई देगा। तहियतुल मस्जिद ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کے طور پر پڑھا کرو۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا، جو شخص یہ دونوں چیزیں کھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا، اگر تم یہ چیزیں کھانا ہی چاہتے ہو تو انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر کے کھاؤ، کیونکہ اس بو سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ شیخ حلبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے سگریٹ کی بو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے، ان دونوں کے کھانے میں کوئی نقصان بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بے شمار نقصانات ہیں اور فائدہ کوئی نہیں۔ اگر کسی کو کسی مرض کے ازالے یعنی ختم کرنے کے لیے لہسن یا پیاز استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے، معذور قرار دیا، یعنی کہ ان کا عذر سچا ہے۔ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی شامل ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ آپ نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر مسجد کا فرش پختہ ہے تو تھوک پانی یا کپڑے وغیرہ سے صاف کیا جائے گا۔ کیا مسجد میں سو سکتے ہیں؟ جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے، یعنی کسی وقت بھی خواب میں جنابت کی کیفیت طاری ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کو منع نہیں کیا۔ مسجد میں خرید و فروخت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری سوداگری یعنی تیرے اس کاروبار میں نفع نہ دے، یعنی بد دعا دی گئی کہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی چیز اگر کوئی بیچ رہا ہے تو۔ اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو، لا رد اللہ علی، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں بنائی گئیں۔ مراد یہ ہے کہ مسجد کے بنائے جانے کے جو مقاصد ہیں وہ یہ نہیں۔ یہاں تک آپ دیکھیے مسائل تھے، آئیے ذرا اس کی دہرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا چیز ہے، پھر آگے انشاءاللہ فضائل بھی آئیں گے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں جنت کا گھر؟ چلیے، کتنے لوگ چاہتے ہیں دنیا کا گھر؟ ساری زندگی لگ جاتی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کا گھر 20 سال لگ جاتے ہیں ایک بندے کا اپنا گھر بنانے میں، پھر بھی بناتے ہیں لوگ۔ چھوڑو، کیا کرنا ہے، کچے گھروں میں رہ لیتے ہیں، کیمپس بنا لیتے ہیں، کیریبین میں رہ لیتے ہیں، نہیں اللہ کے گھر کیوں نہیں؟ اور یاد رکھیے، مسجد سے مراد صرف وہ ہماری روایتی مسجد نہیں، اس میں مدرسہ بھی ہے۔ مسجد نبوی مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھی، عدلیہ بھی تھی، وہاں فیصلے بھی ہوتے تھے، وہ میٹنگ پلیس بھی تھی۔ تو اسلام میں جو لفظ مسجد ہے یہ ملٹی پرپز ہے، نماز تو آپ کھلی جگہ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے میرے ذریعے سے یہاں بھی اپنے گھر بنوائے، کیونکہ مسجدوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، لیکن بس نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے رستوں میں دینے والا بنائے۔ وہ جگہ اللہ کی رحمتوں کو ترستی ہیں کہ جہاں لوگ اپنی ذات پہ تو دل سے لگائیں، اور اللہ کے رستے میں 1 پاؤنڈ بھی لگانا پڑے تو 10 دفعہ سوچیں اور پھر لگائیں۔ اور آپ دیکھیے جو چینج ہوتا ہے، عموماً جا کے لوگ مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیتے ہیں کہ اب کہاں لے لے کر پھریں گے۔ تو نیت پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دل والے بھی رکھے، ایک ایک بندہ ایک پوری جگہ بنا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی ٹیک کیئر اچھی کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مسجد کی فضیلتوں میں دیکھا کہ اللہ کو پیاری ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجد سے محبت کرنی چاہیے، اپنے بیٹوں کو بھی سلال دیں مسجدوں کے ساتھ۔ مسجد بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، اپنے بچے، حدیث میں جو روایت ہے 7 لوگ اللہ کے عرش الہی میں ہوں گے، اس میں ایک وہ جوان جس کا دل مسجدوں میں لگ گیا، اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں۔ مسجد از دیئر سیکنڈ ہوم، وجہ شروع سے عادت ہے، یا وہ گھر میں ہے یا مسجد میں، تیسری جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ आप देखिए कि अपने यंग बेटे जिस दौर में आप और मैं रह रहे हैं, इवन बेटियां, बेटियों के दिल मदरसों से लगा दें, बेटों के दिल मस्जिदों से लगा दें, आपकी नस्लें खराब नहीं होंगी इंशाल्लाह। बाहर के फितने आपके बच्चों पे असर नहीं करेंगे। एक स्पिरिचुअलिटी भी होती है मस्जिद की। फिर इसी तरह से बाजार नापसंदीदा, आज बाजारों में हुसन बिखरा पड़ा, टोप टोप करती हुसन परियां, जवान बच्चियां बच्चे सभी जाते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया के बाजार थे वहां का माहौल वैसा था। बाहर के बाजारों को देख लीजिए, यहाँ का माहौल ऐसा है। बिना जरूरत ना जाए, विंडो वॉचिंग के लिए ना जाए, कभी बड़ी जरूरत के साथ भी जाना पड़े तो उसके लिए भी कराहत के साथ जाइए, काम करके फौरन आइए, और ऐसे हाल हुलिये में जाइए कि लोग चीजों की बजाय आपको ना देखने लग जाए। फिर इस तरह बाजारों में अमूमन हिर्स होता है, तमा, झूठ, लेन देन में फरेब होता है। आज आपके लिए शायद नई बात होगी, नमाजों के सवाब के नाते से। कितनों को ये बात पहले पता थी कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज, कितनी नमाजों की बात है, 250। और मस्जिद नबी के बारे में अमूमन लोग क्या कहते हैं, 50,000। पता क्यों कहते हैं? चलो खाना कामा में लाख है ना, तो मस्जिद नबी में आधी तो होगी। ये हमारा मर्च मसाला है, 1,000, वो भी बहुत है। फिर आप देखिए कि हरम में 1 लाख नमाज, सुबहान अल्लाह। मैंने वहां जाकर लोगों को होटलों में पढ़ते देखा, कहते हैं ये भी हरम ही है। बाजारों में फिरते हैं, घूम रहे हैं, शहरों पे गए हैं, ज्यारतों पे गए हैं, तो हरम की नमाज कोई बात नहीं, अब ज्यारत पे गए हैं वहीं पढ़ लेंगे। हरम की हद से बाहर गए होते हैं, 1 लाख नमाजें फौत हो गई। ज्यारत का आपको क्या सवाब हुआ, नमाज का अजर तो था। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार जाता है तो अल्लाह उसकी मेहमानी का सामान करते हैं, और जो जब भी जाए तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें रग़बत दिलाई है। फिर नफिल नमाज घर में पढ़िए, लेकिन फर्ज मस्जिद में, सुन्नत नफिल घर में। हमारे कल्चर में ये जो सारी 17 रकत इकट्ठी पढ़ी जाती है, उसकी वजह से कई लोग पढ़ते ही नहीं है, और फिर घरों में जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर बच्चे कैसे देखेंगे नमाज पढ़ता हुआ आपको। ये सही मुस्लिम की रिवायती 1190। और इसी तरह तहियतुल मस्जिद 2 नफिल है, ये भी आप मस्जिद में दाखिल होते ही पढ़ें। प्याज लहसुन नहीं खाना, खाना है तो कब कैसे खाना है, नमाज के वक्त में नहीं। क्यों भला, कोई सवाल कर सकता है, क्या इस्लाम इसका दुश्मन है? नहीं, दूसरों को तकलीफ ना हो, सुभान अल्लाह। तो फिर खाना पकाते ही, खाते ही, उठते ही फौरन ऐसे ही नहीं कपड़ों में मस्जिद में जाए, नहीं जाए। आप देखते हैं कि इन चीजों की स्मेल रहती है, और फरिश्तों को तकलीफ होती है तो साथ खड़े नमाजियों को क्यों ना होगी। फिर इसी तरह अगर मस्जिद में किसी मजबूरी की वजह से थूकना पड़ जाए तो उसको साफ करना है, और बाई तरफ है और मट्टी में दबाना होता है। आजकल की जो मस्जिद है उसमें तो आप थूक भी नहीं सकते। अपने हाथ में हमेशा कोई नैपकिन रखिए, कपड़े का अपने को ना लीजिए और उसमें थूक कर मसल दें, बाद में जाके धो लें। जरूरत पड़े तो मस्जिद में सोया जा सकता है, और खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती, इल्ला ये कि मस्जिद ही की कोई चीज़ है जो उसी के अंदर प्रॉफिट में जा रही है। कोई गुमशुदा चीज ऐसी नहीं कि जैसे वो अक्सर मोहल्ले की मस्जिदों में ऐलान हो रहे होते हैं, फलां बच्चा गुम गया ये वो। मस्जिद में बावजू होकर नमाज के लिए जाना हज के अहराम बांधने के बराबर सवाब है, अबू दाऊद की रिवायत। और मस्जिद में बाजमात नमाज का सवाब घर में तन्हा पढ़ने से 25 गुना ज्यादा है। अब ये चीजें इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, आज हमने इधर ही रुकना है। कल इंशाल्लाह मस्जिद में जाने की फजीलत से बराह रास्त शुरू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो आज पढ़ा है वो चीज़ें मज़ीद हमें समझ आएंगी। जी, नमाज का कज़ा का फिदिया, सिंपल रूल बताऊं, हर वो नमाज जिसका आपको पता है मेरी कज़ा हुई है। और मोमिन की ज़िंदगी में ये कभी हो नहीं सकता कि एक भी नमाज कज़ा और वो अगली से भले पढ़ ना ले, फ़ौरन पढ़ेंगे उसको, पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।